Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
क्योंकि सूक्ष्म शरीर में रहने वाला जो शब्द है वह वैखरी के रूप में परिणत नहीं होता. वाणी वैखरी के रूप में परिणत होने के लिए तो स्थूल अन्नमय कोष में संबंधित होना पड़ेगा. सूक्ष्म मनोमय विज्ञानमय प्राणमय कोष में वैखरी वाणी नहीं होती है. पश्यन्ति मध्यमा हो सकती है लेकिन वैखरी नहीं होती सामान्यतया. तो कई बार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और किसी से बात कर रहा है तो सामान्य नियम तो यह है कि जागृत वाले को कुछ पता नहीं कि स्वप्न में क्या बोल रहा है. लेकिन कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि वह स्वप्न में बोले हुए शब्द जागृत में वैखरी में परिणत हो जाता है. इतना तादात्म्य हो जाता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ कि वह स्वप्न में जिससे बात कर रहा है जो बात कर रहा है जागृत में वह वैखरी के रूप में परिणत होता है और उसके बगल में जो बैठा हुआ है वह सुनता है कि ये क्या बोल रहा है. और बाद में जब वह जग लेता है तो जिसके साथ बात कर रहा है तो वह व्यक्ति वहां उपलब्ध नहीं होता. और जगा हुआ पहले से जगा हुआ व्यक्ति उससे पूछता है कि अरे तू तो यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था, किसके साथ बोल रहा था, तो वो बड़ा आश्चर्य मानता है. क्या हुआ, मैं स्वप्न देख रहा था, फलाना आदमी आया था और मैं उससे बात कर रहा था. तो उससे बात कर रहा था, स्वप्न के व्यक्ति से बात कर रहा था तो वैखरी वाणी क्यों बोल रहा है. तादात्म्य के चलते ऐसा हो जाता है. निद्राया दर्शिता नार्थान पश्यति न पश्यति यथोत्थितान. स्वप्न में ही वो व्यक्ति यदि जग जाता है, स्वप्न में माने रात्रि में ही यदि वो व्यक्ति जग जाता है तो सूर्य को नहीं देखता है. तो फिर विचार करने लगता है कि ये क्या हो गया, अभी अभी जिस सूर्य को देख रहा था वो कहां चला गया, अभी क्यों नहीं. और यदि रात्रि के समय में सूर्य को देखा तो फिर कैसे देखा, और यदि स्वप्न में देखा था तो फिर अभी वो सूर्य कहां चला गया. तो जैसे जगने के बाद वो पदार्थ उपलब्ध नहीं होते. दृष्टांत, जिस मित्र को तुम स्वप्न में देख रहे थे जागने के बाद वह मित्र उपलब्ध नहीं होता. जिस वस्तु को तुम स्वप्न में देख रहे थे जागने के बाद वो वस्तु उपलब्ध नहीं होता. ये जैसा दृष्टांत सामान्य प्रचलित है और प्रसिद्ध है, ये दृष्टांत सर्वानुभूत है, ये सभी ने अनुभव किया हुआ प्रसंग है. ये निद्राया दर्शितान अर्थान न पश्यति यथोत्थितः सम्यक् ज्ञानोदयात् ऊर्ध्वम् तथा विश्वम न पश्यति. इसी तरह यदि जिस समय सम्यक ज्ञान होता है, अभी जो आपको ज्ञान है ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है. हमको आपको इस समय जो ज्ञान हो रहा है ना, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, यानी यथार्थ ज्ञान नहीं है. ये ज्ञान भी अयथार्थ ज्ञान है. अयथार्थ ज्ञान का अर्थ क्या हुआ पता है, ये अपरा विद्या का विषय है. यथार्थ ज्ञान उसको कहते हैं जो पराविद्या का विषय है. जब तक किसी भी प्रमाण के बिना जो ज्ञान नहीं होता तब तक वह यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता. किसी प्रमाण के द्वारा होने वाला ज्ञान, किसी साधनों के द्वारा होने वाला ज्ञान, किसी करणों के द्वारा होने वाला ज्ञान, वह ज्ञान हमेशा दूसरे के माध्यम से होने वाला होने के कारण ये ज्ञान को यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकते. ये अयथार्थ ज्ञान है. और इसी अयथार्थ ज्ञान को मुंडक श्रुति ने अपरा विद्या कह दी है. ये सब पदार्थ संबंधी जो ज्ञान है ये प्रमाण प्रमेय वृत्तिजन्य ज्ञान है, साधन द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। और जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक फिर ये पदार्थ स्वप्न के जैसे अनुभव में नहीं आएंगे। अयथार्थ ज्ञान में तो जैसे स्वप्न में तो स्वप्न के अंदर का पदार्थ यथार्थ ही लगता है, इसी तरह जागृत भी अयथार्थ ज्ञान की अवस्था होने के कारण ये भी अयथार्थ पदार्थ यथार्थ जैसा लगने लगता है। सम्यक् ज्ञानो दयानूर्ध्वं तथा विश्वं न पश्यति। सम्यक् ज्ञान पश्चात यह विश्व इस तरह आपको नहीं लगेगा जिस तरह अभी आपको लग रहा है। सम्यक् ज्ञान ये एक कंडीशन है, विशेष शर्त है। इस समय का जो प्रपंच स्वप्न की तरह भासने के लिए, अनुभव में आने के लिए आपके पास जो अभिज्ञान है ये पर्याप्त नहीं है, ये सक्षम नहीं है, इसकी जगह दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होगी। वो ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान। सम्यक् ज्ञानोदयानूर्ध्वं तथा विश्वं न पश्यति, तब फिर आपको ये लगेगा जगत वास्तव में स्वप्न है। इस बात को सुरेश्वराचार्य जी ने आपने अपने परम दादा गुरु सुरेश्वराचार्य जी के परम दादा गुरु, एक तो दादा गुरु होते हैं दूसरा परम दादा गुरु, आप समझ गए किसके लिए कह रहे हैं। शंकराचार्य जी के दादा गुरु कौन है? गौड़पादाचार्य। और सुरेश्वराचार्य जी के परम दादा गुरु गौड़पादाचार्य है। परम दादा गुरु अपने गुरु के भी दादा हो तो परम दादा नहीं हुए नहीं। शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य और गोविंद पादाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य और शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी। सुरेश्वराचार्य जी गौड़पादाचार्य जी के प्रमाण को रिफरेंस के रूप में देंगे तो क्या हुआ, परम दादा गुरु हो गए कि नहीं, परदादा, दादा परदादा। तो गौड़पादाचार्य जी ने जो बात कही मांडुक्य कारिका में उसको यहां प्रमाण के रूप में रख दिया है। गौड़पादाचार्य जी ने कारिका में लिखा है, अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबोध्यते। जीव अनादि मायया सुप्तः, हम लोग इस समय सोए हुए हैं और कोई भी इस बात को मानने को इस समय तैयार नहीं है कि मैं सोया हुआ हूं। हर व्यक्ति कहता है मैं आंख से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, नाक से सूंघ रहा हूं, त्वचा से शीत उष्ण कठोर कोमल का अनुभव कर रहा हूं, मन से संकल्प कर रहा हूं, वाणी से बोल रहा हूं, पांव से चल रहा हूं, समग्र व्यवहार कर रहा हूं इंद्रिय करण आदि के माध्यम से, तो मैं कैसे सोया हूं भाई। सोने वाला तो व्यस्तों में एक ही व्यक्ति होता है, किसी शायर ने कहा है ना, आदमी सोया जमी पर, आदमी सोया जमी पर। जब आदमी सोता है तो वो न देखता है न सुनता है ना। आपके व्यवहार में भी तो यही होता है ना, उसको बुलाओ ये राम प्रसाद, यदि वो बोला नहीं सुना नहीं आपकी आवाज को तो आप कहोगे क्या, सो गया है। आदमी सोया जमी पर लोग कहते हैं मर गया, आदमी सोया जमी पर लोग कहते हैं मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया पर लोग कहते हैं मर गया। कितनी उल्टी बात है। और किसी अपने घर जाना, उसको लोग कह देते हैं मर गया, बेचारा घर गया है और लोग कहते हैं मर गया है। संसार तो यही उल्टा ही है, है? वो तो नदी में बगाने के बाद ऊपर की तरफ खोजने जाते हैं, संसार तो ऐसा है, है? नदी का प्रवाह एक तरफ है और खोजने जा रहे हैं उसके ठीक विपरीत। शरीर बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है और तैयारी कर रहे हैं जवानी की, कि शरीर जवानी में मिले कैसे, जवान कैसे हो। तो ये ठीक विपरीत खोजी है कि नहीं बोलो। बुढ़ौती में जवान होने की इच्छा, ये विपरीत अनुसंधान है कि नहीं है? बोलो, बुढ़ौती में जवान होने की इच्छा। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, ये तो तमोगुण का लक्षण है कि नदी में जिगर बगा दिया एक तरफ और खोजने गए दूसरी तरफ। अनादि माया सुप्त, अब इस माया के द्वारा सुप्त कोई व्यक्ति सोना मानता ही नहीं है, तो अब क्या समझाएं उनको। वो तो ऐसे सफाई से बात कर रहा है कि माया उसको छू ही नहीं रही है। आप जो कह रहे हो ना कि अभी मैं जगा हुआ हूं, ये कहना कॉन्फिडेंस के साथ आप जो कह रहे हो कि मैं जगा हूं, तो ये तो ऐसा कह रहे हैं आप कि माया आपको छू ही नहीं रही है। और जबकि पूरी तरह माया के चपेट में है, माया के बस में है, माया के नशे में है, तो गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं अनादि माया सुप्त जीव, यदा जीव प्रबुद्ध्यते, प्रबुद्ध्यते जगाया जाता है, जीव को जगाना पड़ता है, अपने आप नहीं जगता है। निद्रा में सोने वाला जीव भले ही वो अपने आप जग जाए, लेकिन माया में सोने वाला जीव अपने आप नहीं जगने वाला है। प्रबुद्ध्यते, जगाना पड़ता है उसको। जब कोई इसको जगा देता है तो कौन जगाएगा? तो जगाने वाले के लिए साधन बता दिया है श्रुति आचार्य वाक्य, श्रुत्याचार प्रसादेन योगाभ्यासेन, योगाभ्यास वशेन च ईश्वर अनुग्रहेणापि स्वात्मबोधो यदा भवेत्। ये जगाने वाले तीन हैं, आपसे भिन्न तीन हैं, या चार मान लो, इसी को चार कृपा, कृपा चतुष्टय कहा गया है। श्रुति, ये जो प्रसिद्ध लौकिक निद्रा से तो आप खुद भी जग सकते हैं, और क्योंकि इस निद्रा में आप खुद ही गए हैं और इस निद्रा से आप खुद भी जग जाओगे, कोई कितना सोएगा, 5 घंटा 8 घंटा 12 घंटा कोई कितना सोएगा। हमको कोई पूछते हैं महाराज आपको कितने समय निद्रा लगती है, कितने समय सोते हैं आप, तो हमने कहा हमको यदि स्वतंत्र सोने को मिल जाए 12-14 घंटा तो हम आराम से सो सकते हैं, अच्छी निद्रा लगती है, बस तो सो जाते हैं। अभी भी 8-9 घंटे तो सोते ही हैं भाई, शाम को खाना खाए और सो, चिंता नहीं है तो कहा चिंता मम जीवन है। चिंता जिसको हो को उसको पर निद्रा नहीं आती है, जिसको चिंता नहीं है तो वह निद्रा ना आवे, निद्रा ना आवे इसका मतलब चिंता है, चिंता नहीं है तो निद्रा आ जाती है। तो हम खुद सोते हैं और खुद उठते हैं, लेकिन ये माया में भी हम खुद ही सोए हुए हैं, लेकिन आश्चर्य की विडंबना है कि ये खुद उठते नहीं। सो तो गए, कब सो गए? आप माया रूपी निद्रा में कब सोए? अनादि, शाम को कितने बजे सोए, तो आप घड़ी देखकर बता सकते कि मैं 9 बजे सोया, 10 बजे सोया। आज कोई यात्री आ गए थे, गेस्ट आ गए थे, तो रात को सोने में देर हो गई, 1 बजे तक गप करते रहे, 1 बजे के बाद सोए, आप बता सकते हो। लेकिन ये निद्रा जो माया की निद्रा है, जिस निद्रा में आप और हम, मैं भी उसी में सोया हूं वो, और इस समय में स्वप्न में प्रवचन सुन रहे हैं आप और मैं, स्वप्न में प्रवचन कर रहा हूं। आप लोगों ने स्वप्न देखा है कि नहीं प्रवचन सुनते हुए? मैंने तो कई बार देखा है प्रवचन करते हुए, कई बार सुनते हुए भी देखा है, कई बार करते हुए भी देखा है। शायद आप लोगों ने भी स्वप्न सुनते हुए देखा हो, और मुझे लगता है कि कई बार तो प्रवचन करने का ऐसा वासना, ऐसी वासना आपके अंदर हो सकती है कि स्वप्न में आप प्रवचन भी करने लग गए हो। लेकिन ये महास्वप्न तो माया के द्वारा सम्मोहित हुआ हुआ जो अवस्था है, इसको महास्वप्न कहते हैं। अनादि, कब से ये स्वप्न शुरू हुआ है किसी को पता नहीं है। आप जीव कब बने थे पता नहीं है, आपका शरीर कब पैदा हुआ ये तो बर्थडे लिखा होगा, माता पिता ने कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा हॉस्पिटल में, और वहां तिथि मिति सब लिखी होगी, समय लिखा होगा, और उसके आधार से आप कह सकते हो कि यह शरीर का जन्म। आप तो सीधे कह देते हो कि मेरा जन्म, कहना तो यही चाहिए कि यह शरीर का जन्म फलाना दिन हुआ है, फलाने साल हुए, फलान जगह हुआ। लेकिन आप कह देते हो कि मेरा जन्म फलाने साल, फलाना महीना, फलाना तिथि मिति, फलाने जगह। ये तो कम से कम है, लेकिन आप जीव बने कब ये कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए अनादि, बन गए सो बन गए, कैसे बन गए क्या पता, कैसे बन गए। इसलिए अनादि माया सुप्तो, यदा जीव प्रबोध्यते, उस सोए हुए जीव को जब जगाया जाता है, श्रुति जगाती है। इसीलिए जगाने वाला, जैसे आपका नाम पद्म प्रसाद है, आपका नाम क्या है, पद्म प्रसाद है, और आप सोए हैं मस्ती से, और कोई आकर कमल प्रसाद करके बुलाएगा तो आपकी निद्रा खुलेगी कि नहीं है? पर्यायवाची शब्द से है, पद्म प्रसाद का अर्थ क्या होता है, कमल प्रसाद होगा कि नहीं है? तो आपका नाम है पद्म प्रसाद और कमल प्रसाद करके बुलाएंगे तो आप उठोगे? अभी भी नहीं उठोगे। कोई यहां पद्म प्रसाद बैठा हो और मैं उसको कह कमल प्रसाद है इधर आओ, तो अभी भी पद्म प्रसाद नहीं उठेगा, ये नहीं कहेगा कि पद्म का अर्थ कमल होता है और मुझे बुला रहे हैं। वो पद्म वही शब्द उसको चाहिए जगाने के लिए, जो उसका नाम है वही चाहिए, उसका विकल्प पर्यायवाची शब्द नाम से वह उठेगा नहीं। उठता है बोलो, पद्म प्रसाद नाम है तो पद्म प्रसाद ही उसको शब्द उठा सकता है, कमल प्रसाद शब्द नहीं उठा सकता। इसी तरह अनादि माया से सोया हुआ जीव को श्रुति ही उठा सकती है, श्रुति के अलावा और दूसरा कोई उठाने में समर्थ नहीं है। महावाक्य ही उस निद्रा से आपको जगा सकती है, क्योंकि आपका असली नाम कुटस्थ है, आपका असली नाम ब्रह्म चैतन्य है, आपका असली नाम शुद्ध है, सच्चिद आनंद है, और सच्चिद आनंद आपका असली नाम है, और सच्चिद आनंद को बताने वाली महावाक्य ही है। उसके अलावा आपको अनादि माया रूपी निद्रा से जगाने में और कोई भी शास्त्र सक्षम नहीं है। अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्यते अजम, क्योंकि आपका असली नाम अज है। ये देवदत्त यज्ञदत्त तो ये सब काल्पनिक नाम है, असली नाम नहीं है। आपका असली नाम क्या है? अज, अजन्मा। और अज ये शब्द से आपकी अनादि माया की निद्रा टूटेगी। कोई आज करके बुलाएगा तब, लेकिन ये आप यदि आज करके बुलाएंगे तो नहीं उठने वाले हैं। फिर श्रुति ही बुलाना पड़ेगा, श्रुति की आवाज आपको सुननी पड़ेगी, श्रुति आपको पुकारेगी। और जब श्रुति जोर से पुकारती है आज, तो तुम्हारा क्योंकि वो असली नाम है तो आप जगते हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य निर्वरान निबोधत चुरस्य दारा निश्चित दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। श्रुति इस तरह उठाती है, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्यते तदाय। श्रुति जब इस तरह उठाती है तब अनादि माया की निद्रा जब उसकी टूटती है तब वह अपने आप को अजन्म अनिद्रम निद्रा से रहित, अस्वप्नम स्वप्न से भी रहित, निद्रा शब्द से सुसुप्ति, सुसुप्ति से रहित, स्वप्न से रहित, अद्वैतम अजम प्रबुद्यते, अपने स्वरूप में वह जग जाता है। तब फिर ये विश्व प्रपंच जो इस समय अभी आपको बाहर प्रतीत हो रहा है, तब आपकी सत्ता से भिन्न सत्ता प्रतीत नहीं होगा। तो बाहर जिस रूप में प्रतीत हो रहा है उस रूप में फिर प्रतीत नहीं होगा। उठाएगा कौन? तो सुरेश्वराचार्य जी बोलते हैं, श्रुति आचार्य प्रसादेन योगाभ्यास वशेन च ईश्वर अनुग्रहेणापि स्वात्मबोधो यदा भवेत। चार कृपा प्रसिद्ध है, आत्मकृपा, योग अभ्यास की आवश्यकता है। योग अभ्यास का अर्थ जो रामदेव जी का योग है वो नहीं लेना यहां, वो तुम्हें अपने स्वरूप में जगाने में समर्थ नहीं होगा। रामदेव का जो योग है शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, वसा और चर्बी का अंश ज्यादा है, नस आदि थोड़े से उसके छिद्र मोटे पतले हो गए हों, उन सब को प्योरिफाई करने में समर्थ है। शरीर शोधन में हेतु है। ये आसन का जो आप कह रहे हैं ना कि कपाल भांति, रामदेव जी एक ही वाक्य बोलते हैं, कपाल भांति करो सब रोग का निदान है, ब्लड प्रेशर भी उसी से कम होगा है, शुगर भी उसी से कम होगा, सब कुछ उसी से कम होगा, कपाल भांति करो, कपाल भांति करो। तो ये योग से आप जगने वाले नहीं हैं। शरीर कुछ समय के लिए निरोग हो सकता है, अनादि माया से जगाने में समर्थ नहीं है। तो फिर कौन सा योग यहां अपेक्षित है? ध्यान देना, योग के दो पक्ष हैं, एक राजयोग, दूसरा क्रियायोग यानी हठ योग। यहां क्रियायोग हठ योग आपको अनादि माया से जगाने में समर्थ नहीं है, राजयोग आपको अनादि माया से जगाने में समर्थ है। आपको राजयोग का प्राणायाम करना पड़ेगा। राजयोग के प्राणायाम अपरोक्ष अनुभूति में स्पष्ट शंकराचार्य जी ने लिख दिया है, उसकी प्रक्रिया लिखी है राजयोग के प्राणायाम की। क्रियायोग में सबसे पहले रेचन करना पड़ता है, प्राणायाम के पहले रेचन, प्राण को अंदर भरो। दूसरे नंबर में कुंभक करो, तीसरे नंबर नहीं, पहले पूरक करो। क्रियायोग में पहले पूरक करो, प्राण को अंदर भरो, दूसरे नंबर में कुंभक करो और तीसरे नंबर में रेचन करो। ये क्रियायोग का प्राणायाम है। लेकिन राजयोग के प्राणायाम क्या है पता है? पहले रेचन करो, उसके बाद पूरण करो, पूरक, और तीसरे नंबर में कुंभक करो। ये राजयोग, उसकी प्रक्रिया पढ़ लेना अपरोक्ष अनुभूति में, राजयोग की प्रक्रिया। यद्यत चक्षुर्भ्यम पश्यति तत्तद आत्मेति आत्मैव भावयत, आज से जो दिखाई पड़ रहा है वहां अस्थिभाति प्रिय रूपी आत्मा की भावना करो, ये राजयोग का है। आंख से जो दिखाई पड़ता है, तो इस प्रकार के राजयोग का अभ्यास यदि आप करते हो तब फिर श्रुति तुम्हें आराम से जगा सकती है, और ये राजयोग का अभ्यास नहीं करोगे तो श्रुति भी जगाने में समर्थ नहीं, आचार्य भी जगाने में समर्थ नहीं। अपनी तैयारी हो तो आचार्य भी जगाने में समर्थ हैं, श्रुति भी जगाने में समर्थ हैं। कई बार कहीं जाना होता है जल्दी, तब ये कहा जाता है सोने से पहले, सोने से पहले घर में मां और पिता को, बुजुर्ग को, सास को, ससुर को ये कहा जाता है सुबह 5 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, मम्मी यार मुझे 4 बजे उठा देना। हाँ, जब तुम इस तैयारी से सोते हो तब तो मां 4 बजे उठा देती है तो तुम उठ जाते हो, और वही मां दूसरे दिन 4 बजे उठने की तुम्हें तैयारी थी नहीं, संडे है, वही मां 4 बजे उठाती है तो तुम उठते हो, क्यों नहीं उठते हो? क्योंकि तुम्हारी तैयारी नहीं है, उठने की तुम्हारी तैयारी नहीं है तो मां उठाने पर भी तुम नहीं उठोगे, और यदि तुम्हारी उठने की तैयारी है तो मां के यदि कदाचित न उठाए तो मां के स्नान करने जाते हो बाल्टी की आवाज से ही तुम उठ जाओगे, मां को भी उठाना नहीं पड़ेगा, कदाचित न भी उठे तो मां एक आवाज लगाई तब तो तुम उठ ही जाओगे, क्योंकि उठने की तुम्हारी तैयारी है। आज तो संडे है इसलिए 37 भी हो चुका है टाइम तो प्रसंग ऐसा है भाई, श्रुत्याचार प्रसादेन योगाभ्यास वशेन च ईश्वरानुग्रहेणापि स्वात्मबोधो यदा भवेत् भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेन नैव पश्यति पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस तथा। जैसे अभी अभी खाने से पहले खाने के लिए रखा हुआ भोजन थाल में इदम 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 का व्यवहार करते हो कि नहीं, यह भात है, यह साग है टिंडोला के साथ है, व्यवहार होता है कि नहीं, यह टिंडोला के साथ, ये चटनी, ये खम्मन, ये रस, ये पूरी, ये श्रीखंड, यह 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 यह, और वो सब थोड़ी देर में खा लेते हो तो वह पेट के अंदर जाने के बाद वो श्रीखंड क्या होता है, यह होता है कि अहम होता है? मैं लेव जी, पहले अभी अभी यह 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 कह रहे थे, जिसको इदम कहा था थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, पेट के अंदर जाने के बाद अहम हो जाता है। इसी तरह जब पूर्ण बोध हो जाता है श्रुति आचार्य की कृपा से, जब आप जग जाते हो तो बाहर अभी इदम 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 जो दिखा हुआ था बाहर, वह पूर्ण अहम के रूप में, अपने से अभिन्न के रूप में आपको बोध होगा। जरूरत है जगने की, जरूरत है जगने का संकल्प करने, जगाने तो तैयार है, श्रुति भी तैयार है, आचार्य भी तैयार है, परंतु तुम्हें जगने का संकल्प ही नहीं है, तुम्हारी तैयारी नहीं है, तो फिर इसी तरह सोते रहेंगे, कब तक सोते रहेंगे देखा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।